मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 21 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के संदर्भ में उदार दृष्टिकोण पर बात कर रहे थे और कल की न्यूज में आपने सुना कि किस तरीके से दिल्ली में एक सर्व पार्टी सभा की गई जिसमें सभी राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए और सभी ने समान रूप से उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और सच पूछिए तो ये जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई, अगर आप उनके बोलने वालों के हाव भाव देखें, उनकी जो भाषा रही है, उनकी आंखों की जो चमक रही है, उन पर आप जाएं तो पाएंगे कि ये कोई महज औपचारिकता नहीं थी कि चूंकि अटल बिहारी जी नहीं रहे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इसीलिए हमें वहां जाना चाहिए। और जाने के बाद, जैसा कि भारतीय एक तरीके से परंपरा रही है कि किसी की मृत्यु पर अच्छी अच्छी बातें ही की जाती हैं, तो हम भी अच्छी अच्छी बातें करें। मित्रों ये तो औपचारिकता की बात है, लेकिन आप महसूस करेंगे अगर आप उन सबको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि उनके अंदर से जो आवाज निकल रही थी वो बहुत सच्ची आवाज थी, वो दिमाग से नहीं, वो दिल से निकल रही थी। और आपने देखा होगा कि सब उनकी उदारता की तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत ही लिबरल अप्रोच के व्यक्ति थे। हालांकि ठीक है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे जो एक सांस्कृतिक संस्था है, वो पहले जनसंघ से और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर राजनीतिक दल के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का वो पालन भी करते थे और उन सिद्धांतों का पालन करते हुए जो अपने उदारता है उसको वो अलग ढंग से व्याख्यायित करते थे और अपने ढंग से उसे व्यवहार में भी लाते थे। दोस्तों तो मुझे लगा कि कल जो उदार दृष्टिकोण के बारे में हम बात कर रहे थे, क्यों ना आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो मैं आज इसी उदारता पर आप सबसे थोड़ी सी बातें करना चाह रहा हूं। सच पूछे तो इस पर बात करने का मेरा जी कर भी रहा था। मैं अपनी बात की शुरुआत फ्रेंड्स अब्राहम लिंकन के एक उदाहरण से करना चाहूंगा। यह उनके जीवन की सच्ची घटना है। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना है जो अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं और उनकी सबसे बड़ी महानता इस बात में है कि उन्होंने वहां जो दास प्रथा थी, स्लेवरी, वो जायज थी। मतलब अपने घर में दास रखना, गुलाम रखना जायज था कानून के तहत। उसको उन्होंने खत्म कर दिया था एक कानून बना करके और कहा जाता है कि उसी के विरोध में उनकी हत्या भी हुई, क्योंकि एक वर्ग ऐसा था जो उस प्रथा का समर्थक था, वो नहीं चाहता था कि दास प्रथा खत्म हो। दरअसल जब वो मित्रों दास प्रथा के समय में जब अब्राहम लिंकन थे तो इसके विरोध में आंदोलन भी शुरू हो गए थे। और अमेरिका का आप नक्शा देखेंगे तो एक तो उत्तरी अमेरिका है, जो न्यूयॉर्क वगैरह की हम सब बात करते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में है। और इसके बाद फिर दक्षिण अमेरिका है जो लैटिन अमेरिका, मैक्सिको वगैरह से सटा हुआ है, वो दक्षिण अमेरिका देश, मतलब अमेरिका का दक्षिण भाग है। तो गुलामी के विरुद्ध में सच पूछिए तो उस समय अमेरिका के दक्षिण भाग में बहुत जबरदस्त रूप से आंदोलन भी शुरू हो गया था। चलिए ठीक है, तो जब आंदोलन शुरू हो गया और नो डाउट कि उसमें राजनेता के खिलाफ आवाज भी उठेगी, तो बहुत से लोग अब्राहम लिंकन की बहुत आलोचना भी करते थे और खासकर जब ये गुलामी प्रथा उन्होंने खत्म कर दी तब भी उनकी बहुत आलोचना हुई है। तब जब बहुत ज्यादा उनकी आलोचना होने लगी दक्षिण अमेरिका से, तो अमेरिका के दक्षिण भाग से कहना चाहिए, तो उनकी जो पत्नी थी, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब्राहम लिंकन की जो पत्नी थी वो बड़ी नाराज हुई और नाराज होने के बाद वो अमेरिका के दक्षिणी भाग के लोगों को उल्टा सीधा कहने लगे, उनकी बहुत आलोचना करने लगी कि ये बदतमीज हैं और ये फलाने हैं, कुछ जानते नहीं हैं, आपके बारे में ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इस तरह की बातें वो करने लगी। लिंकन साहब ने थोड़ी देर तक अपनी पत्नी की बात सुनी और इसके बाद फिर वो बड़े बड़े प्रेम से और धीरे से बोले कि सुनो, नाम मैं उनकी पत्नी का भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि सुनो, इस बात को मत भूलो कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी वही कर रहे होते जो वे कर रहे हैं। बस केवल इतना उन्होंने कहा और इतना सुनना था कि उनकी पत्नी चुप हो गई। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ये मत भूलो कि यदि उनकी जगह हम रहे होते तो हम भी वही कर रहे होते जो वे कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसमें उदारता का कितना जबरदस्त व्यावहारिक सिद्धांत छिपा हुआ है। हम दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, उनके विचारों की आलोचना करेंगे, उनके व्यवहार की आलोचना करेंगे, उनके खान पान रहन सहन विश्वास परंपराओं की आलोचना करेंगे, किसी भी चीज की हम आलोचना कर सकते हैं। तो जो हम हमारी जो आलोचना करने वाली दृष्टि है या जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क कौन सा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और अब्राहम लिंकन उसी को समझ चुके थे। उन्होंने जो समझा वो ये कि हमारे मस्तिष्क का जो निर्माण होता है, हम जो बनते हैं, चाहे वो हमारे विचार हों, चाहे हमारे बिलीफ हों, हमारे कस्टम्स हों, मेरा कस्टम, आपका कस्टम, किसी का भी बिलीफ, हमारे अपने समाज अपने परिवेश से बनता है, उसी से बनता है। इसीलिए दुनिया में इतने सारे परिवेश हैं, इतने सारे समाज हैं, और उन सबके अनुकूल अलग अलग समाजों ने अपने अपने लिए विश्वास, कस्टम, रीति रिवाज, परंपराएं, आप विचार विकसित कर लिए हैं। तो अगर मेरा अपना विश्वास दूसरों से अलग है, तो क्या मुझे यह नहीं मान करके चलना चाहिए कि यह इसलिए है क्योंकि मैं यहां हूं? और अगर मैं ये मान लेता हूं कि मेरा इसलिए ऐसा है क्योंकि मैं यहां हूं, तो मुझे इस बात को मानने में क्यों संकोच करना चाहिए कि भाई उसका भी इसलिए वैसा है क्योंकि वो वहां है, और अगर वो वहां है इसलिए वो ऐसा है, तो स्वाभाविक है कि अगर मैं भी वहां रहूंगा या रहा होता तो मैं भी उसके जैसा होता, टू सम एक्सटेंट। तो मित्रों, जो इस दृष्टि को लेकर के चलते हैं, या कह लीजिए कि इस फिलॉसफी या इस जीवन मूल्य को स्वीकार कर लेते हैं, उनके अंदर फिर एक उदारता का भाव स्वाभाविक रूप से आता चला जाता है, स्वाभाविक रूप से चला जाता है। क्योंकि प्रकृति कभी भी डुप्लीकेट काम नहीं करती, वो एक ही जैसा नहीं बनाती। यहां तक कि एक ही परिवार के दो भाई क्या एक जैसे होते हैं? अगर आप राम और लक्ष्मण के विचारों को ले ले तो आप देखें कि दोनों के विचारों में कितना फर्क है। कहीं कहीं तो आपको दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी दिखाई देंगे, जबकि दोनों एक ही परिवार से हैं। माता ठीक है, दोनों की अलग अलग है, लेकिन पिता एक ही है, राज परिवार से हैं, एक ही परिवार में भरण पोषण हुआ है, दोनों की शिक्षा एक ही गुरु के माध्यम से हुई है। और फिर राम और लक्ष्मण दोनों आपस में कितने घनिष्ठ भाई भी हैं और मित्र भी हैं, इसके बावजूद दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। और उदारता देखिए, उदारता यहां आपको देखना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने बाण मार करके मूर्छित कर दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था? राम ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि वन जाने से मेरे बंधु से विछोह हो जाएगा, तो मैं पिता की बात तक नहीं मानता और वन में आता ही नहीं। जो जन तहु वन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेही नहीं ओहू, मैं आता ही नहीं। इतना लक्ष्मण से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन विचार और व्यवहार के स्तर पर दोनों भिन्न हैं। तो यहां आप जो राम को भगवान मान रहे हैं, मैं जो भगवान मान रहा हूं, दुनिया के बहुत से लोग जो मान रहे हैं, वो किस लिए मान रहे हैं? इसी उदारता के कारण। दोस्तों, उदारता जीवन का एक बहुत बड़ा तत्व है। केवल इसलिए नहीं कि दूसरे हमें माने, इसलिए भी कि इसमें ही हमारा विकास होता है। अदरवाइज हम बिल्कुल ठहर जाएंगे, एकदम ठहर जाएंगे। और ठहरने का मतलब है पत्थर हो जाना, ठहरने का मतलब है चट्टान में तब्दील हो जाना, और चलते रहने का मतलब है नदी बनना। एक नदी जो गंगोत्री से निकलती है, जो गोमुख से निकलती है, और लगातार फैलते फैलते बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, जो इतनी लंबी यात्रा करती है और रास्ते भर के लोगों को सुख प्रदान करती है, उनका पोषण करती है, और इसी पोषण और सुख प्रदान करने के कारण वह मां कहलाने लगती है। यह बहने का ही परिणाम है, यह फैलने का ही परिणाम है, अपने को विस्तृत करते जाने का परिणाम है। अगर मेरी बाहें लंबी नहीं होंगी, उसका दायरा छोटा होगा, तो स्वाभाविक है कि उसमें आने वाले लोग भी, समाने वाले लोग भी तो बहुत कम होंगे, और अगर समाने वाले लोग बहुत कम होंगे तो मुझे स्वीकार करने वाले लोग भी बहुत कम होंगे। होता यह है फ्रेंड्स कि हम अपनी ही बिलीफ विश्वास के इतने गुलाम हो जाते हैं कि हमें अपने सिवाय कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता, हम दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते। कम से कम हम अपने दिमाग को खुला रखें, किसी को भी आपको रिजेक्ट करने का अधिकार है और लोग करते हैं और किया भी जाना चाहिए, लेकिन तार्किक आधार पर। उसकी जगह हम खुद को रख करके थोड़ा सा सोचें, क्योंकि उसकी जगह पर रख करके जब हम खुद को सोचेंगे तब पाएंगे कि हमारी सोच में बहुत फर्क आ गया है। हम उसकी जगह पर खुद को रखते ही नहीं, अपनी जगह पर अपने को रख करके उसके बारे में सोचते हैं। यहां हमसे सबसे बड़ी गलती होती है और इसीलिए हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। इसे आप चाहे मेरा स्वार्थ कह लीजिए, चाहे आप इसे मेरा ईगो कह लीजिए, या चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी परंपराओं, रीति रिवाज, विचारों का इतना गुलाम हो गया हूं, या एक अच्छा शब्द लाना चाहे तो इतना अभ्यस्त हो गया हूं, इतना आदी हो गया हूं, हैबिचुएट हो गया हूं कि मुझे दूसरी चीजें बड़ी अनकंफर्टेबल लगती हैं, और बस जब अनकंफर्टेबल लगती है तो मैं रिएक्ट कर जाता हूं, उसे स्वीकार नहीं कर पाता, और यही मैं अपने दिमाग और अपने हृदय के दरवाजे दूसरों के लिए बंद कर देता हूं, और इसके साथ ही मेरे विकास का रास्ता रुक जाता है। तो दोस्तों, उदारता के बारे में, उदार दृष्टिकोण के बारे में मैंने थोड़ी सी अपने मन की बातें आप सबसे शेयर की हैं। आप सब भी इस पर विचार कीजिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत ठीक लगता है तो इस रास्ते पर आगे बढ़िए, और अगर ठीक नहीं लगता है तो रिजेक्ट कर देना आपका बिल्कुल अधिकार है या आपके ऊपर है। और अब मैं इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगा, इस सूचना के साथ फ्रेंड्स, और सूचना यह कि कल गजेटेड हॉलीडे है, इसलिए कल आप सबसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। परसों फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।